माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी जन वल्लभ गिरिवर धारी कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya जय गौरनिताई 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 जय गौरनिताई। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरिका गण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद महाराज की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। गीताय गौर प्रेमानंदे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये। नष्टं प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के द्वारा स्थापित इस भागवत सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ये बहुत बड़ा लाभ है जो भागवत हमें मिलता है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपा केले कृष्ण वेद पुराण। ये माया मुग्ध जीव, मायाग्रस्त जीव इतना ग्रस्त है इस भौतिक जगत में, स्वतः ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन जीवों के ऊपर कृपा करके कृष्ण ने वेद पुराण की रचना की है। स्वयं भगवान जो व्यास के रूप में अवतरित होकर इस ग्रंथ की रचना कर जो ज्ञान प्राप्त कर सकते इस ग्रंथ से, इस वेद पुराण से, और स्मृति स्मरण भी इस अध्ययन करके कर सकते हैं। अगर कृष्ण कृपा नहीं करते तो व्यक्ति कितना भी प्रयास करे अपने आप वो नई स्मृति और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इस कृष्ण की कृपा करके वेद पुराण की रचना की है। उस वेद और पुराण के, इन सभी वेद और पुराणों के सार रूप में जो महाभागवत, जो महापुराण है, इस महापुराण को लाभ प्राप्त हम कर रहे हैं, जो बड़ा दुर्लभ है। प्रभुपाद की कृपा से हमें यह प्राप्त हुआ है। ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, कृष्ण कृपा प्रसादे पाए। जब जब कृष्ण और गुरु की कृपा होती है तब यह लाभ प्राप्त होता है भागवत सुनने का, श्रवण करने का, कीर्तन करने का। तो इस मनुष्य जन्म प्राप्त करके हमें जो ये लाभ प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है। हम देखते मिराज में कहीं कितने लोग हैं, कितने लोग आते हैं इस कक्ष में, आजू बाजू में रहते फिर भी नहीं आ पाते। क्योंकि कृष्ण की कृपा और गुरु और साधु की कृपा नहीं होती है तब तक ये अवसर प्राप्त नहीं होता है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं जो इस अवसर को रूपाद ने जो दिया है लाभ, उस लाभ को हम पा रहे हैं, उठा रहे हैं। और वास्तव में कृष्ण की कृपा है, कृष्ण ने कृपा करके शास्त्र और वेद पुराण की रचना की है, लेकिन उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है तो साधु की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। जो कृपा है वो तो प्रभुपाद की कृपा से हमें यह लाभ प्राप्त हुआ है और होता है। तो बहुत दुर्लभ है ये अवसर तो भागवत सुनना, कीर्तन करना हो। तो इस महापुराण श्रीमद् भागवतम के सत्र में आप सभी भक्त बड़े भाग्यशाली हैं और इस लाभ प्राप्त करते हुए हम आज के इस सत्र में अग्रसर होते हैं, जो श्रीमद् भागवतम क्रम के अनुसार यहाँ पर चलता है। जो नवमा स्कंध चल रहा है, विश्वाध्याय और श्लोक 20 है। यदा न जगृहे राजा भार्या पुत्रो अनिंदितो शृण्वतां सर्वं भूतानां खे वात आह अशरीरिणि। यदा न जुग्रहे राजा भार्या पुत्रावनिन्दितो शृण्वतां सर्वभूतानां खेवादः शरीरिणि। यदा न जुग्रहे राजा भार्या पुत्रावनिन्दितो शृण्वतां सर्वभूतानां खेवाग शरीरिणो। यदा न जुग्रहे राजा भार्या पुत्रावनिन्दितो शृण्वतां सर्वभूतानां हे वागा शरीर। श्लोक में आए हुए शब्द अर्थ इस प्रकार है। यदा जब ना नहीं जब गृह स्वीकार किया राजा राजा ने भारिया पुत्र अपनी असली स्त्री तथा असली पुत्र को अनिंदितो जो निर्दोष थे अनिंदित सुनमता सुनते हुए सर्वभूतानाम सारे लोगों के खे आकाश में वाक शब्द ध्वनि ने आह घोषणा की अशरीरणी शरीर विहीन अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिविदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय श्री राधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। अनुवाद इस प्रकार है, जब राजा ने अपनी निर्दोष पत्नी तथा पुत्र दोनों को स्वीकार करने की से इनकार किया तो आकाश से एक अदृश्य आवाज हुई जिसे वहां उपस्थित सभी ने सुना। तात्पर्य, महाराज दुष्यंत जानते थे कि शकुंतला उनकी पत्नी और छोटा बालक उसका पुत्र है, किंतु बाहर से आने और प्रजा को ज्ञान न होने से दुष्यंत ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। किंतु शकुंतला इतनी सती थी कि आकाशवाणी ने सारी संस्थाएं बतला दी जिससे दूसरे लोग सुन सके। जब सब लोगों को पता चल गया कि शकुंतला तथा उसका पुत्र राजा के ही पत्नी एवं पुत्र है तो राजा ने उन्हें स्वीकार कर लिया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानन्दन श्लाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पसर्वभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो इस प्रसंग चल रहा है महाराज दुष्यंत का, तो हम कल सुने 16 नंबर के श्लोक से और 16 नंबर की व्याख्या में फिर बाद में 17, 18 और 19 तीन श्लोक में प्रभुवाद का तात्पर्य नहीं है, इसलिए आज 20 नंबर का श्लोक है। तो उन श्लोकों तीन श्लोकों पढ़कर अनुवाद सुनाते हैं, फिर बाद में 20 नंबर श्लोक से कुछ चर्चा करेंगे। 17 नंबर श्लोक इस प्रकार है, अमो वीर राजमहेश्या वीर्य माधदे स्वभूते स्वपुरम यात कालेना सुत स सुतम। अमोघ वीर्य राजा दुष्यंत ने रात्रि से रात्रि में अपने रानी शकुंतला के गर्भ में वीर्य स्थापित किया और प्राप्त होते ही अपने महल में वो लौट आया। तत्पश्चात समय अनुसार शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। 18 नंबर श्लोक। कणम कुमारस्य वने चक्र समुचिता क्रिया अबद्वा मृगेन्द्र सरसा क्रीडितम स्व स बालक। अनुवाद। कणव मुनि ने वन में नवजात शिशु के सारे संस्कार संपन्न किए। बाद में वह बालक इतना बलवान बन गया कि वह सिंह पकड़कर उन साथ खेलता था। 19 नंबर श्लोक। तम दुरत्य विक्रांत मादाय प्रमोदिताम हरेरहंसाम शुंभंतम भर्तुम कृतांत मागतम। सुंदरियों में श्रेष्ठ शकुंतला अपने पुत्र को जो दुर्मनीय तथा भगवान का अंश अवतार था अपने साथ लेकर अपने पति दुष्यंत के पास गई। अब दुष्यंत के राजमहल में शकुंतला आई है और इस श्लोक 20 नंबर में श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी यदा न जुग्रह राजा भार्या पुत्र व निंदितो सुनवताम सर्वभूतानाम खे वागासी अशरीरिणी। जब महाराज दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया, गंधर्व विवाह करके फिर बाद में उनके साथ एक रात बिताई और रात बिताने के बाद सुबह होते ही महाराज दुष्यंत वहां से चल गए अपने राज्य में। और समय जाते ही शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया और जन्म देते ही वो कणव मुनि के आश्रम में वन में जन्म दिया। तो कणव मुनि ने उनका संस्कार संपन्न किए, जो भी विधि संस्कार होता है वो कणव मुनि ने संपन्न किए। और संपन्न करने के बाद वो पुत्र जब बड़ा हुआ थोड़ा तो मृगेंद्रिय सह बालक, उस बालक मृगेंद्रिय मतलब जो वन में मृग रहते हैं हरण रहते उनका इंद्र जो सिंह रहता है तो सिंह के साथ वो बालक क्रीड़ा करते थे, मतलब खेलते थे, इतना बलवान था वो पुत्र शकुंतला और दुष्यंत के। तो इस पुत्र को लेकर, ऐसा बलवान पुत्र को लेकर फिर बाद में सुखदेव गोस्वामी कहते को हरेर अंश जो हरि के अंश के समान था वो पुत्र, उस पुत्र को लेकर शकुंतला दुष्यंत महाराज के राजमहल में गई। जो राज्यसभा में सभी लोग बैठे हुए थे उसी स्थान पर शकुंतला और उनके पुत्र के साथ वो पहुंची और पहुंचते ही उसने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ और ये आपके पुत्र हैं। राजा जानते थे, प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि दुष्यंत राजा वो पहचान गए कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन सभी लोगों के सामने वो स्वीकार नहीं किए क्योंकि सभी लोग को पता नहीं था कि महाराज ने शादी की है और उनको स्वीकार करने से लोगों को शंका होती है होगी, कुशंका शंका और कई प्रजा में लोगों का नापूछी भी चालू कर देंगे, ये कहाँ से आई है, कौन पुत्र है, कौन सा कुल में कुल से आई है। तो इसलिए राजा दुष्यंत ने उसको स्वीकार करने मना कर दिया कि मैं आपको जानता नहीं हूँ। लेकिन शकुंतला पतिव्रता नारी होने के कारण वहां आकाशवाणी हुई खे वाग अशरीरिणी। खे मतलब आकाश, वाग शब्द, वाग शब्द कहे अशरीरिणी, कोई शरीर वाला उस शब्द को उच्चार नहीं किए, देह रहित उस वाणी से उस आकाशवाणी में कहा कि हे राजा ये आपकी ही पत्नी और पुत्र है। क्योंकि सभी लोगों को परिचय देना था, राजा दुष्यंत तो जानते थे लेकिन सभी लोगों को परिचय दिलवाने के लिए उसने मना कर दिया कि मैं आपको नहीं जानती हूँ। जिस तरह रामायण में हम देखते हैं कि भगवान राम ने भी सीता को कहा कि आपको अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ज्ञान न होने के कारण शंका कुशंका होती रहती है। इस भौतिक जगत का नियम है कि भूल देखना और भूल करना, जो वास्तव में गुण नहीं देखते अवगुण ही देखते हैं सभी लोग और भूल करते भी हैं, ये स्वभाव है मनुष्य का। तो इस ज्यादा करके लोगों सरसा ना करें, को विचार ना आए मन में, इसलिए जो राजा होते हैं उनको यह धर्म रहता है कि प्रजा के सामने वो खुला अपने आप प्रस्तुत आए, जैसा उनका चरित्र है वो चरित्र प्रजा के सामने प्रस्तुत करें। जो बड़े राजा होते हैं उनको भी ऐसा चरित्र प्रस्तुत करता है, और जो साधु पुरुष होता है वो भी अपने जीवन में जो व्यतीत करते हैं, वो जो उनका जीवन में जैसा जीवन व्यतीत करते ऐसा ही वो प्रस्तुत होते हैं। और भौतिक जगत में हम देखते हैं जैसा बाहर दिखता है वैसा अंदर नहीं होता है। इसलिए भगवान राम ने भी कहा, जब रावण के साथ युद्ध करके जब अयोध्या में लौटे तो भगवान राम ने भी कहा सीता को आपको अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को तुम कहीं कितने समय तक बाहर रहे रावण के साथ, तो लोगों शंका तो होती रहे होगी। यदि भी भगवान थे फिर भी वो तो जानते थे सीता परम पवित्र और सती है, फिर भी लोगों के सामने दिखाने के लिए भगवान ने कहा कि आपको अग्नि परीक्षा देना होगा। तब उस अग्नि में परीक्षा देने के लिए, और वास्तव में वो यह बात तो यही थी कि जब रावण सीता को हरण करने के लिए आया तब वास्तव में जो सीता थी वो तो अग्नि ने ले लिया था, और माया सीता को रावण के सामने प्रस्तुत किया था। तो उस गुह्य बात को भी, जो अग्नि के पास असली सीता थी उनको वापस लाने के लिए भगवान राम ने कहा था कि आपको अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा। तो और साथ साथ में लोगों को भी पता चल गया ना, वास्तव में सीता जो है परम पवित्र है, उस बात दर्शाने के लिए अग्नि परीक्षा भगवान ने कहा कि आपको अग्नि परीक्षा देना होगा। तो इस तरह लोगों को प्रस्तुत करने के लिए ऐसी घटनाएं राजा ऐसी परिस्थिति में ऐसा कार्य करते हैं। फिर भी लोगों शंका सुशंका होता है व्यक्ति के मन में। इसी तरह चैतन्य चरितामृत में भी प्रश्न है, कृष्णदास सूर्यदास गोस्वामी लिखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए तो दक्षिण भारत में जाकर उस स्थान पर पहुंचे जहां मदुराई, जो आज के समय में हम कहते हैं मदुराई, जो वहां मीनाक्षी मंदिर है बड़ा, उस स्थान में कामकाष्ठ नाम के एक स्थान था, वहां एक विप्र था, जो चैतन्य महाप्रभु मदुराई में शिव जी का स्थान वो है। तो वहां चैतन्य महाप्रभु शिव जी का जो मंदिर में दर्शन किए, और दर्शन करके बाद जब लौट रहे थे तब एक रामदास विप्र करके उनसे भेंट हुई चैतन्य महाप्रभु से। तो रामदास विप्र ने कहा और चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होकर कहा कि आप मेरे घर में भिक्षा ग्रहण करने के लिए पधारिए। रामदास विप्र ने कहा चैतन्य महाप्रभु से, तब महाप्रभु ने उस आमंत्रण को स्वीकार किया। जब दोपहर मध्याह्न समय आया भोजन का, भिक्षा ग्रहण करने का, तब चैतन्य महाप्रभु उनके घर पर गए। मध्याह्न के समय कृत्यमाला नदी में स्नान करके मध्याह्न में जब चैतन्य महाप्रभु उनके घर पर पहुंचे, तब वो रामदास विप्र ऐसे बैठा था और कुछ तैयारी नहीं किया था वो, और सोच रहे थे मन में ही। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे ब्राह्मण, अरे विप्र, आपने अभी तक कुछ तैयारी नहीं किया और मध्याह्न तो हो गया है, कुछ बनाया नहीं, कुछ आपने निमंत्रण देकर मुझे बुलाया है, फिर आप तो कुछ तैयारी किए या नहीं। तब विप्र ने कहा, वो राम चंद्र भगवान के परम भक्त थे, तो उसने कहा कि अभी हम तो वन में हैं, अभी तक कुछ तैयारी हुई नहीं, फल फूल और लक्ष्मण जी गए लेने के लिए, जब वो लेकर आएंगे और सीता माता उसको बनाएंगे तब हम ग्रहण करेंगे। तो इस भाव को देखकर चैतन्य महाप्रभु अति प्रसन्न हुए, और उनकी निष्ठा देखकर रामचंद्र भगवान के प्रति। फिर महाप्रभु ने कहा, ठीक है अभी आप जो भी हो उसको बनाइए, मध्याह्न हो गया है तो कुछ तैयारी कीजिए। तब वो ब्राह्मण ने 2-3 घंटे में सब प्रसाद वो ग्रहण बनाया और महाप्रभु ने ग्रहण किया, लेकिन वो ब्राह्मण ने वो प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब महाप्रभु ने कहा, आप नहीं ग्रहण करेंगे? तब वो रामदास विप्र ने कहा, मैं ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मन जलता है, मेरा देह जलता है, मैं तो मर जाना चाहता हूँ अग्नि में प्रवेश करके या जल समाधि लेकर। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, ऐसा क्यों आप सोचते हो, ऐसा क्या आपको विपदा है कि आप मरना चाहते हो, आपका शरीर नष्ट करना चाहते हो? तब वो कहते हैं कि जगत माता सीता जो महालक्ष्मी है, लेकिन राक्षस से स्पर्श करने के कारण मैं जब यह बात सुना हूँ तब से मेरा मन खिन्न हो रहा है और मैं सोचता हूँ कि मैं यह शरीर त्याग दूँ, क्योंकि राक्षस होकर सीता माता का स्पर्श कैसे कर सकती है वो, मैं ये बात सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं यह शरीर त्यागना चाहता हूँ। रामदास विप्र इतना कहकर वो रोने लगे और उनका मन खिन्न होने लगा। तब चैतन्य महापुरुष कहते हैं, ठीक है आप जो कहते हो वो बात सही नहीं है, आपका जो निष्ठा है वो अच्छा है, लेकिन जो आपने सोचा है जो सुना है वो वास्तव में वो असली सीता तो अग्निदेव की पास थी, और जो अग्निदेव ने फिर प्रस्तुत किया वो माया सीता थी, इसलिए आप इतना दुखी मत हो और आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, आप अन्न ग्रहण कीजिए। तब चैतन्य महाप्रभु की बात सुनकर वो प्रसन्न हुए रामदास विप्रा, और उसने फिर बाद में प्रसाद ग्रहण किया और प्रसन्न होकर चैतन्य महाप्रभु वहां से आगे रवाना हुए दक्षिण भारत की यात्रा में। और आगे जाता जाते जब रामेश्वर स्थान पर पहुंचे, रामेश्वर में तब रामेश्वर में स्थान पर पहुंचे तो वहां श्री रामेश्वर का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जब वो सभाखंड में आए चैतन्य महाप्रभु, तब सब विप्र वहां बैठकर शास्त्र के अध्ययन कर रहे थे, और उसमें भी यही प्रसंग कुर्म पुराण से वो चर्चा कर रहे थे। उसमें एक प्रसंग आया कि वो जो सीता का एक प्रसंग चल रहा था उस विप्र के बीच में, तो उसमें प्रसंग चल रहा था कि वो जो असली सीता थी वो अग्निदेव ने ले लिया था और माया सीता को रावण के सामने प्रस्तुत किया था, और उसी को माया सीता को हरा करके रावण ले गया था। जब वो बात चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो वो अति प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान से फिर भी वो कूर्म पुराण के साथ कूर्म पुराण में सुना तो महाप्रभु को बहुत प्रसन्नता हुई, और वो सब विप्र को ब्राह्मण को कहा कि मुझे यह कॉपी चाहिए कूर्म पुराण की। वो कॉपी हस्तलिखित करके फिर बाद में जो पुरानी एकदम कॉपी थी वो लिया चैतन्य महाप्रभु, फिर से वो उधर पहुंचे जहाँ वो विप्र रामदास विप्र था उनके पास वो कॉपी लेकर चैतन्य महाप्रभु, और उसने वो कॉपी पढ़कर सुनाया कि जो आपने जो मैंने कहा और जो इस कूर्म पुराण में भी पुराण है पुरावा है जो कि ये जो माया सीता थी वही रावण को हरण रावण उन्हें हरण करके ले गए थे, और वास्तव में जो असली सीता थी वो अग्निदेव के पास थी। तब वो ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए, क्योंकि उनको प्रूफ मिल गया ना शास्त्र से कूर्म पुराण से। फिर वो चैतन्य महाप्रभु को शरण में दंडवत प्रणाम करके कहे कि आप ही वास्तव में रामचंद्र है, लेकिन सन्यासी के रूप में दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, तो आप अभी आप पधारे हैं तो फिर से मेरे हाथ से प्रसाद ग्रहण करके आप जाइए, क्योंकि पहली बार आप आए तब मैं आपकी स्वागत इतना कर नहीं सका, आप इधर रहिए और प्रसाद ग्रहण करके फिर बाद में आप जाइए। तब चैतन्य महाप्रभु उसके हाथ से उनके घर पर प्रसाद ग्रहण किए, फिर रात वहाँ रुके, फिर बाद में वहाँ से चले गए। तो इस घटना से इस बात से जो रामचंद्र ने जो सीता देवी से जो परीक्षा ली, उस परीक्षा लेकर भी सब लोगों ने जानते हुए भी इस भक्तों के मन भाव में और अन्य लोगों को भी ऐसा ज्ञात होता है कि ना नहीं ये ऐसा हुआ है, तो इस बात को प्रूफ करने के लिए सत्य करने के लिए राजा दुष्यंत ने मना किया कि आप मेरी पत्नी हो। फिर आकाशवाणी हुई कि अनिंदित हो जो संकुचला पतिव्रता नारी थी, पतिव्रता नारी होने के कारण आकाश से देवताओं ने वाणी की और सभी लोगों ने सुना, क्यों खाली दुष्यंत ने नहीं सुना, सर्व भूताना सभी लोग वहां उपस्थित थे, वो सभी ने वो देववाणी सुनी आकाशवाणी, ताकि सभी को पता चले कि वास्तव में यही संकुचला महाराज दुष्यंत की पत्नी है और उनके पुत्र है ये, क्योंकि आगे जाकर उन्हीं को राजा बनना था। जब तक उनके बारे में नहीं जानेंगे कोई तब उनको राजा स्वीकार तो करेंगे, लेकिन उनके मन के उनके अंदर उनका जो भाव है उनका विश्वास है वो इतना दृढ़ नहीं होगा, और लोगों को शंकाएं होती रहेगी कि ये राजा कहाँ से आया है, उनकी पत्नी कहाँ से आई है कुछ पता नहीं है, और राजा ने दुष्यंत महाराज ने उनको राजा बनाया। लेकिन जब देववाणी देवलोक जब कहेंगे तब सभी लोगों को विश्वास हो जाएगा कि नहीं नहीं ये वास्तव में राजा दुष्यंत की पत्नी है, महाराज की पत्नी है और उनका ही पुत्र है, और पुत्र भी इतना प्रभावशाली होगा जो आगे जाके भरत महाराज होगा, और आगे 22 नंबर में श्लोक में आएगा कि उनके हाथ में जो बच्चा जो पुत्र था उनका उनके हाथ में दक्षिण हाथ में एक चिन्ह था चक्र का जो कृष्ण का चक्र है उनका, उनके हाथ में जन्म से वो चिन्ह है, और पांव में शरण में उनके भरत माधव दुष्यंत का पुत्र है भी, वो उनके शरण में कमल के दांडी का निशान चिन्ह है, ऐसा वर्णन आगे आए कि इतना महान है राजा के पुत्र। तो उस पुत्र को राजा बनाने के लिए देववाणी हुई, आकाशवाणी हुई और राजा उनको स्वीकार किया। तो इसी आकाशवाणी से हम भागवतम में सुनते हैं, और एक जगह पर आकाशवाणी हुई है जो इसी तरह श्लोक उसमें आया है, श्रीमद् भागवतम दसवां स्कंद पहला अध्याय में 37 नंबर श्लोक है, उसमें भी पति सगृहणीतम कंसम आभाष्य अहम अशरीर वाक जच्चाताम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे अबुध। अहम अशरीर वाक स्कंद अध्याय 37 नंबर श्लोक में यही शब्द आया है, अशरीर वाक, जो अशरीर मतलब अदृश्य शरीर वाला वाक बोले, जो आकाशवाणी जो आकाश से होता है, आकाश से विनी होती है, जो देवता द्वारा उच्चारित होती है। तो इस श्लोक सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब वसुदेव और देवकी का शादी होता है, ब्याह होता है, तब कंस उसको रथ में बिठा कर जब ले जा रहे थे, और जब ले जा रहे थे तब इस आकाशवाणी होती है कि हे दुष्ट, हे अबुध, हे मूर्ख कंस, तुम जिसको ले जा रहे हो उनका ही पुत्र, उनका अष्टम गर्भ तुम्हारा हत्या का कारण बनेगा। वहां सुखदेव गोस्वामी और प्रभुपाद तात्पर्य में इस श्लोक के तात्पर्य बताते हैं कि वो देववाणी थी लेकिन वो अमंगलवाणी थी, और जो दुष्यंत के राजा के जब जो आकाशवाणी हुई वो मंगल करने के लिए हुई, क्योंकि उस मंगल में उस वाणी में शकुंतला और उनका पुत्र का और राजा दुष्यंत का मंगल होने वाला था, और इस देववाणी हुई जो देवताओं के द्वारा उच्चारित हुआ इस वाणी को, वो अमंगल थी। क्योंकि अमंगल थी क्योंकि राजा कंस का उसमें भय और क्रोध और बढ़ेगा इस शब्द को सुनकर, और भगवान के प्रति द्वेष भी और बढ़ेगा, इसलिए यह प्रभुपाद तात्पर्य में लगते हैं कि उस वाणी को अमंगल कहा है प्रभुपाद ने। तो इसी तरह जब ये आकाशवाणी होती है तब प्रूफ यानी कि सत्य लोगों को सामने आता है कि नहीं वास्तव में ये सत्य है, इसलिए महाराज दुष्यंत ने उस शकुंतला को शिकार करने के लिए मना कर दिया, लेकिन जब देववाणी हुई तब स्वीकार किया और सब प्रसन्न हो गए राजा दुष्यंत। तो इस श्लोक से और एक महत्वपूर्ण हमें शिक्षा प्राप्त होती है, तो राजा या साधु जब मनुष्य के सामने प्रस्तुत होता है तब जैसी स्थिति होती है उसी तरह वो प्रस्तुत होते हैं। हम देखते हैं महाराज दुष्यंत जब शकुंतला और उनके पुत्र आए सामने, तो उनको प्रजा के सामने से अकेले घर में नहीं लेके गए, क्योंकि वो अकेले वो घर में लेके जाते तो वो तो राजा थे, वो समर्थ थे, उसको कोई कह नहीं सकता कि आप क्यों उनको अपने घर में लेके अपने महल में लेके गए। लेकिन महाराज दुष्यंत इतना प्रभावशाली राजा थे कि उनको चरित्र में कोई शंका न करे, इसलिए सबके सामने उनको जैसा था वैसा प्रस्तुत होना था, इसलिए मना किया। और इसी प्रकार जो साधु पुरुष होते हैं वो भी सभी लोगों के सामने जो सत्य रूप में सामने प्रकाश होते हैं, जो ढोंगी और जो ऐसे धन्यवाद वाले जो साधु होते हैं वो बाहर से दिखावा करते हैं लेकिन अंदर से जो उनका है वो छिपाते हैं। तो वास्तव में ढोंगी है जो लोगों को ठगते हैं, या ठगने वाले लोग जो वास्तव में है वो जैसा होते हैं वैसा प्रस्तुत नहीं होते हैं, लेकिन जो साधु पुरुष है जो वास्तव में जो भगवान को भक्त होता है वो जैसा अपने जीवन में है वैसा ही सामने वाले को प्रस्तुत होता है। और इसी तरह ठीक राजा भी अपना कर्तव्य समझकर जो जैसा जैसा राजा होता है, आज के समाज में हम देखते हैं कि जो नेता होता है वो जैसा सामने आता है ऐसा पीछे नहीं होता है, वो तो कई काले धंधे करते हैं लेकिन बाहर दिखते हैं कि नहीं बड़ा हरिश्चंद्र दिखता है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। लेकिन पहले के जमाने में जो राज ऋषि जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि इस कुल में जो राजा हुआ है वो राजा ऋषि के समान थे, जैसा है वैसा ही सामने आते प्रजा के सामने। तो इस प्रजा के सामने इसी तरह प्रस्तुत होने के लिए महाराज दुष्यंत ने मना कर दिया उनको स्वीकार करने के लिए, संकुचला और अपने पुत्र को। और इसी तरह साधु पुरुष जो होते हैं वो भी अपने जीवन में जो भी घटना घटती है वो सामने प्रस्तुत करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। बुरी घटना को छुपाते नहीं है जो साधु, जो सरल व्यक्ति होता है वो। जो दिखावा करते हैं वो बुरी घटनाओं को छुपाते हैं, और सामने जो नहीं दिखाने लायक है वो छुपाते हैं, और जो जो नहीं होता है वो दिखाते हैं। लेकिन जो साधु पुरुष होते हैं वो ऐसा नहीं होते, वो अपने आप को ठीक ठीक रूप में सभी के सामने, जो जो भी हो, गलत हो या सही हो, सभी के सामने प्रस्तुत होते हैं। तो इसी तरह जो राजी होता है तभी वो लोगों को अपने आश्रित कर सकते हैं, शरणागत कर सकते, साधु हो या राजा हो, तभी उनकी बात का प्रभाव व्यक्ति के सामने, प्रजा के सामने उनके बात का प्रभाव उनके ऊपर शासन कर सकता है। जब उनका सही सही आचरण उनके सामने, प्रजा के सामने प्रस्तुत होता है तब। अगर वो छुपाता है और कुछ नहीं बताता है और गलत बात छुपाता है, और जब लोगों को मालूम पड़ता है तब उस बात को बहुत गंभीरता से लेता है व्यक्ति और प्रजा भी। इसलिए राजा हो या साधु हो, जो वास्तव में उनका जीवन चरित्र है वो प्रजा के सामने या साधु उनके आश्रित हो उनके सामने प्रस्तुत करता है, ताकि उनका आचरण देखकर, उनका राजा हो तो उनकी प्रजा को वास्तविक जो उनके आश्रित है प्रजा, यानी कि उनका उनका रक्षण कर राजा होता है, तो राजा उनके सामने ठीक ठीक प्रस्तुत आ जाते भी वो प्रजा का विश्वास जीत सकता है, वरना वो इसमें विश्वास उनका आदर प्रजा का वो नहीं जीत सकता। तो इसी तरह जो साधु होते हैं वो भी अपने आश्रित या गुरु महाराज होते हैं, वो भी सही सही रूप से अपना शिष्य को वही ग्रहण कर सकते हैं, जो शिक्षा दे सकते हैं, जो अपने जीवन सही सही रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी बात को प्रस्तुत करने के लिए महाराज दुष्यंत ने संकुचला को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसी बात को प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि राजा जानते थे कि उनकी पत्नी है, उनका पुत्र है, फिर भी वो मना किए, और मना करने के बाद अनिंदित जो संकुचला थी, जो पवित्र सती नारी थी, तो उस बात को जानते हुए देवताओं ने आकाशवाणी की, जो आकाश से कहा कि राजा दुष्यंत, ये स्त्री है, ये आपकी पत्नी है, और उनके साथ जो पुत्र है वो आपका ही पुत्र है, तो आप उनको स्वीकार कीजिए। तो सभी लोगों ने जब इस बात को सुना, सर्वभूतानां, सभी लोगों ने वो बात सुनी आकाशवाणी, तब सभी लोगों के मन में भी ये बात सत्य स्थापित हो गए कि नहीं नहीं जो राजा ने कार्य किया है वो सत्य है, और उनकी ये पत्नी है और उनका ये पुत्र है, ताकि वो पुत्र आगे राजा बनने वाला था, ताकि प्रजा को उस पुत्र में भी विश्वास हो कि नहीं वास्तव में ये राजकुमार है। तो इस बात को प्रस्तुत करने के लिए महाराज दुष्यंत ने इस बात को अस्वीकार किया। फिर आज के श्लोक में यही भाव है कि सभी जानते हुए भी अस्वीकार किया, ताकि वो प्रजा के सामने प्रस्तुत हो और देववाणी के सभी लोगों ने सुना और सभी लोगों को विश्वास हो कि राजा की पत्नी संकुचला है और उनका ही ये पुत्र है। तो जैसा था राजा वैसा ही वो प्रस्तुत आए, ताकि जो उसने शादी किया था गंधर्व विवाह, और सभी लोग जानते नहीं थे उनके महल में, उनके राज्य में, उस बात को भी पता चल गया इस देववाणी से। और आगे दो तीन श्लोक में है देववाणी ने क्या कहा इस संकुचला के बारे में और उनके पुत्र के बारे में, ताकि सभी लोगों को पता चले कि पुत्र किसका है, और संकुचला जो विश्वामित्र और मनकेर के द्वारा उनकी ही पुत्री है, उस बात को सभी लोग ज्ञात हो। तो इस बात को प्रस्तुत करने के लिए इस श्लोक में आकाशवाणी हुई और सभी लोग इस बात को जाने। तो इसी तरह जो प्रजा के सामने जो शंका कुशंका होती है, तो इस सत्य वचन के द्वारा ही शंका और कुशंका दूर होती है। जिस तरह रामदास विप्र का भी शंका चैतन्य महाप्रभु ने दूर किया, और उसी तरह भी इस शंका को भी आकाशवाणी से दूर हुआ। और चैतन्य महाप्रभु के इस प्रसंग में कृष्णदास गुरुराज जो प्रस्तुत करते हैं रामदास विप्र का, जो हमारे भक्तों के मन में भी जो शंका कुशंका शास्त्र के प्रति या ज्ञान न होने के कारण जो भी शंका होती है, लेकिन जब आश्रित और शरणागत होकर हम शास्त्र का अध्ययन और पाठ करते हैं तब चैतन्य महाप्रभु कृपा करके वो उनका शंका दूर करते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जब रामदास विप्र को उनकी शंका का निवारण कर दिया था, फिर भी वो रामेश्वर से वापस आए, उस सुम पुराण की पौड़ी लेकर फिर से उसने सामने प्रस्तुत किया ताकि उनके मन में सत्य हो जाए निष्ठा के साथ कि नहीं नहीं जो है वो शास्त्र का वाक्य महाप्रभु ने कहा है कुर्म पुराण से। उसी तरह हमारे मन में भी कुछ शंका होती है तो हम शरणागत भाव से उस शास्त्र का अध्ययन करेंगे, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम इस शंका से दूर हो सकते हैं। और निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु हमारी शंका को दूर करेंगे, क्योंकि जो रामदास विप्र का शंका दूर किया उस प्रसंग को रखकर कृष्णदास कविदास गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वहां से चले गए, फिर भी वो वापस आए और उस विप्र का शंका को दूर किया कुर्म पुराण का पुरावा देकर। तो इसी प्रकार भक्तों में भी कुछ शास्त्र के बारे में कुछ सुनने असुनने जो सुना है उसमें शंका होती है तो शरणागत भाव से चैतन्य महाप्रभु की और भक्तों की शरणागत भाव से हम जो इस बात को हम शंका होती है तब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उस शंका से हमें मुक्त प्राप्त होती है और उस शंका दूर होती है। तो इस शंका को दूर करने के लिए भी इस आकाशवाणी हुई और महाराज दुष्यंत इस संकुंतला और उनके पुत्र को स्वीकार किया और स्वीकार करके फिर बाद में क्या उनका आकाशवाणी में कहा कि आपका पुत्र कैसा होगा वो सब आगे के श्लोक में आएगा। तो इस प्रसंग जो महाराज दुष्यंत का इस बीच कृष्ण जन्म के नजदीक और जा रहा है दसम स्कंद से कि सुखदेव गोस्वामी उस वंश को जो चंद्र वंश का वर्णन कर रहे हैं स्पीड में कर रहे हैं, कुछ कुछ लोगों राजा जो महान हुए उनका ही वर्णन करते हुए और गिनाते हुए वंश परंपरा और आगे जा रहे कृष्ण कथा कहने के लिए। तब निजी गा रहे कृष्ण कथा तो सभी भक्त प्रेम से इस प्रसंग को सुनिए और कृष्ण कथा आगे दसम स्कंद प्रारंभ होगा उस भाव के साथ। जब तक व्यक्ति के हृदय में इस प्रसंग को रखकर महाराज दुष्यंत अथवा अन्य अन्य राजाओं का जब तक विरक्ति वैराग्य जीवन में नहीं आएगा तब तक कृष्ण कथा श्रवण में जो आनंद आएगा वो नहीं आएगा, इसलिए इस प्रसंग को कहते हुए सुखदेव को सभी जा रहे। वरना सुख परीक्षित महाराज जो 7 दिन में मृत्यु होने वाला है, जो उनका 3 दिन तो अभी चला गया है, तो फिर भी ये राजा का वर्णन क्यों करे, क्योंकि जिस तरह से इतने भोगों में थी था फिर भी वो विरक्त होकर वैराग्य लेकर भगवत साक्षात्कार किया। तो इस वैराग्य को दिखाने के लिए सुखदेव गोस्वामी इस चरित्र को कहते हैं ताकि वो फिर बाद में कृष्ण कथा को और पूर्ण रूप से आनंद के साथ ग्रहण कर सके। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं आएगा तब तक कृष्ण कथा में आनंद इतना नहीं आएगा। महाप्रभु रे संगी गण वैराग्य प्रधान, महाप्रभु के जो संगी है वो उनका वैराग्य प्रधान है। तो हम भी इस परंपरा में है महाप्रभु की, तो वैराग्य प्राप्त करते हुए कृष्ण कथा सुनने के लिए लालायित होना चाहिए और तभी हम आनंद प्राप्त कर सकेंगे जब हमारे जीवन में थोड़ा बहुत वैराग्य आएगा। इन राजाओं की तरह पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत वैराग्य जो इतना हो सके उतना वैराग्य प्राप्त करके फिर बाद में कृष्ण कथा सुनने के लिए तैयारी अभी से करना चाहिए। तो इस प्रसंग को रखते हुए सुखदेव गोस्वामी आगे इस चंद्र वंश का सोम वंश का वर्णन करते हैं। तो इसी तरह अभी सभी भक्त आए इस भागवत कक्ष में तो खूब खूब धन्यवाद। और यही मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ है कि श्रवण करना और कीर्तन करना, ये परम लाभ है। इस प्रभुपाद की कृपा से हमें अवसर मिला है सुनने का, तो ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को प्राप्त करते हुए अपना जीवन भक्तिमय बिताना चाहिए और आप सभी भक्त हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भी इस मार्ग में आगे बढ़ सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। कोई प्रश्न है तो सुदेव प्रभु को पूछ सकते हैं। बताइए अच्छा प्रश्न है। वैसे देखा जाए तो संसार से वैराग्य लाना बहुत कठिन है इस समय में, वर्तमान समय में, क्योंकि इस कलयुग में इतना माया का प्रभाव है कि हम वैराग्य चाहते हुए भी नहीं ला सकते। यहाँ से बाहर जाते हैं तो पूर्ण रूप से माया ग्रस्त कर लेते हैं। लेकिन इसी प्रकार जो इस भागवत श्रवण करेंगे, जो इन राजाओं का चरित्र हम जब सुनेंगे साधु संघ में, तब थोड़ा बहुत हमें यह ज्ञात होता है, ज्ञान होता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से सही नहीं है, हमें उससे थोड़ा बचना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, साधु संघ में रहेंगे, साथ वचनों के संग में, और इसी तरह भागवत कथा और इन विरक्त पुरुषों का कथा हम जब सुनेंगे, तब हम जीवन में वैराग्य आ सकता है। अपने आप प्रयास करेंगे छोड़ने का तो हम छोड़ नहीं पाएंगे, कुछ दिन छोड़ सकते हैं, फिर बाद में और उनको ग्रहण करने की इच्छा होती है। जो स्प्रिंग रहता है उनको दबाने से दब जाती है, लेकिन छोड़ देंगे तो और उछलेगा। उसी तरह हमारा मन उछलेगा, लेकिन वैष्णव की कृपा के, वैष्णव के साथ जब हम इस राजाओं का चरित्र सुनेंगे, कितना कितना उनके पास वैभव था फिर भी छोड़ दिया, तो इन राजाओं का कथा सुनने से हमें हमारे जीवन में वैराग्य प्राप्त हो सकता है। और खास करके भगवान के नाम, ध्यानपूर्वक नाम हम जप करेंगे, तब निश्चित रूप से हम ये खास नहीं, धीरे धीरे करके हम छोड़कर हमारे जीवन में वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। और शुद्ध शिव प्रभु कुछ इस पर प्रकाश पार सकते बताए पर आपको ही जवाब देना पड़ेगा। वाणी जो जो आपने कहा ना, ब्रह्मा जी जब क्षीर सागर के तट पर गए, सब पृथ्वी माता गाय के रूप ले, सब देवी देवता सब गए क्षीर सागर के तट पर, तब वहां जो वाणी हुई उस श्लोक को मैं कोट किया था लेकिन लिया नहीं। गिरिम समाधो गगने समिति नाम समीप्य विधि श्रेष्ठ ज्ञान उपचय। गिरिम समाधो गगने वहां शब्द आया है, तो उस वाणी हुई ना, उस वाणी भगवान विष्णु के द्वारा उतारी हुई थी, क्योंकि वो समाधि में ब्रह्मा जी ने अकेले ही सुना, सभी देवताओं ने नहीं सुना था। विधिना समाधिनो, विधिना ब्रह्मा जी, समाधिनो समाधि में, उस गगनवाणी को विधिना ब्रह्मा जी ने सुना, तो आकाशवाणी थी विष्णु के द्वारा, भगवान विष्णु। लेकिन इस वाणी जो हुई वो देवताओं के द्वारा थी, जो सभी सर्व लोगों ने सुना। जो देवताओं की वाणी होती है उस बात को प्रूफ करने के लिए होती है, तो वो देवताओं की वाणी होती है। जो जो संत को सुनाई दी, जो वसुदेव और देव के लिए जा रही थी, वो भी देवता देव वाणी थी, क्योंकि सबको सुनना था वो वाणी। और भगवान की वाणी जो होती है वो जो एक ही व्यक्ति के लिए निर्देश करती है, या वो वही सुनता है और नहीं, उनको समाधि में सुने या प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जिनको निर्देश करते हैं वही सुनता है, बाकी लोग नहीं सुन पाते, जो भगवान की वाणी होती है वो। और देववाणी होती है वो तो उनका कुछ लक्ष्य रहता है, लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी को सुनाई देना है, तो वही देववाणी होती है। इसी बात से हमें यह ज्ञात होता है। ठीक है, श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। गौर प्रेमा।